ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको जीवन मुक्ति के बारे में बताया था, अब जीवन मुक्त होकर के जिए, बंधनों से छूट जाए। बच्चा माँ के पेट में बना रहता है, बाहर निकल पड़ता है तो कितना खुश, और कैदी जेल खाने से छूट जाता है कितना खुश, और पक्षी पिंडे में से छूट जाता है तो कितना खुश। मुक्ति का आनंद ऋषियों ने बताया है, आदमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा आनंद है मुक्ति का। स्वच्छंद जीवन जी सकता हो, स्वाधीनता का अनुभव कर सकता हो, तो क्या कहने का। कल मैंने आपको लोभ और मोह और अहंकार के बारे में ये कहा था, आपके सारे दुश्मन ये हैं, और जिनको आपने छाती से लगा रखा है, जिनको मित्र बना रखा है, पर आपने ज़िंदगी का गुजारने का फैसला कर रखा है, आप इन तीनों का तिरस्कार कीजिए, इनके चंगुल से छूट जाइए। कल मैंने ये कहा था, आज आपको एक नई बात बताता हूँ कि आपको स्वर्गीय जीवन जीना चाहिए। आप स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं, निश्चिंत रूप से आप स्वर्ग का जीवन बनने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। स्वर्ग आपका बनाया हुआ है, स्वर्ग आपका बिगाड़ सकते हैं, स्वर्ग आप बना सकते हैं, स्वर्ग आप बिगाड़ सकते हैं। एक हाथ में आपके में स्वर्ग है, एक हाथ में आपके में नरक। आप चाहें तो स्वर्ग को खोल लीजिए और उसको सामने देखिए और मजा उड़ाइए। अगर आपकी इच्छा है हम तो नरक को जिएंगे, तो आप इच्छा से और बिना इच्छा से नरक का इस्तेमाल कीजिए और नरक में फंस जाइए। आपकी बिल्कुल मर्जी की बात है। भगवान ने हर आदमी को स्वाधीन बनाया है, इस योग्य बनाया है कि वो नरक और स्वर्ग में से जिसको भी वर्णन करना चाहे खुशी से कर सके। तब क्या करना चाहिए आपको, आपको एक काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि आदमी अपनी बहुत सारी इच्छा लिए बैठा रहता है, और इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तब दुखी होता है। आदमी की ज़िंदगी 60% दुख इस बात का है कि उसने तरह तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं, तरह तरह की कामनाएं कर रखी हैं, और कल्पना कामनाओं को पूरा न होने पर वो हैरान होता है, दुखी होता है। मानसिक दुख बहुत हैं, आदमी के शारीरिक दुख तो कभी कभी होते हैं, खाने पीने को न मिले शारीरिक दुख, हरी बीमारी हो जाए शारीरिक दुख, बस और क्या दुख है बताइए, कोई दुख नहीं। खाने पीने की कोई कमी है क्या, कोई कमी नहीं। और आप सऊर से रहें भले आदमी के तरीके से, तो बीमारी भी नहीं आए। बीमारी आए भी तो ऐसी बीमारी तो कदाचित ही कभी आती है इसमें कि आदमी बेचैन हो जाता हो, कोई बवासीर हो गया, कोई जुकाम खांसी हो गया, चलते रहते हैं, ये भी चलते रहते हैं। आदमी का दुख एक है, आदमी ने बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी मनोरथ और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं बहुत बना रखी हैं, और वो पूरी नहीं हो पाती। पूरी होना ज़रूरी है ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए दुनिया थोड़ी बनी है। आपकी परिस्थितियों से ही तो अपना मनोकामना पूरी कर सकेंगे, दूसरे आदमी सहयोग देंगे तभी तो बात बनेगी, वातावरण आपके अनुकूल होगा तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल बने कोई गारंटी है, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बन जाए कोई गारंटी है, फिर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए कोई ज़रूरी है। मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, इसलिए आदमी आमतौर से दुखी रहते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, स्वर्गीय जीवन जीने के लिए मनोकामना एक केंद्र पर आगे कर लीजिए, पीछे हटा लीजिए, क्या परिणाम मिलेगा इसको आप मत सोचिए। फिर आप ये सोचिए कि हमारे फ़र्ज और कर्तव्य जो है वो हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप फ़र्ज़ और कर्तव्यों को गौर कीजिए, और फर्ज और कर्तव्य पालन किया कि नहीं किया, सिर्फ इसी बात के ऊपर अपनी खुशी मास्टर कर लीजिए। हमने अपना कर्तव्य पालन किया खुश, हमने अपने बच्चे को शुद्ध बनाने के लिए प्रयत्न किया खुश, हमको अपने माँ बाप के प्रति जो करना चाहिए था वो किया खुश। आप खुशी क्यों नहीं ले सकते, अपनी मुट्ठी में क्यों खुशी नहीं रखते, दूसरों के हाथ में क्यों भेज देते हैं। बेटा आपका सुपात्र बनेगा और आपका आज्ञाकारी होगा तब आप खुश होंगे, और न हुआ तब आपने गिरवी रख दी ना खुशी दूसरों के हाथ में। आपको बीवी आपको हंसी खुशी से रहेगी और आपकी आज्ञा पालन करेगी और आपकी मर्जी से चलेगी, और नहीं चली तब आपने बेच दी ना अपनी खुशी, अब नाराजगी में फिर रहे ना। परिस्थितियों के ऊपर मत गुलाम होइए, अपनी मनस्थिति पर केंद्रित हो जाइए, और केंद्रित होकर के सारे संसार भर में सिर्फ एक खुशी का अपना केंद्र बना लीजिए कि हमको अपने फर्ज और कर्तव्य पालन करने हैं। फर्ज और कर्तव्य पालन करने की अगर आपकी मन होगा और मर्जी होगी तब फिर क्या हो जाएगा, फिर मज़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आपने फर्ज में कोई रोक नहीं सकता। आप अपने मित्रों के प्रति कर्तव्य को निभाएं, इसमें कोई रोकता है क्या। मित्र आपके प्रति बदला चुकाएंगे कि नहीं ये बात सोचेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके मित्र बदला चुकाएंगे, आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे कहना मानेंगे। आप अपनी ये उम्मीद मत कीजिए कि हमारी स्त्री आज्ञानुसारणी बनेगी। आप ये उम्मीद मत कीजिए जैसे हमने ख्वाब संजो रखे हैं उसी तरीके से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, ना ऐसा मत कीजिए। तब क्या करें, आप सब की ओर से समेट करके जो बात आपके हाथ में है और जो मुट्ठी में है उस पर केंद्रित हो जाइए। परिस्थितियाँ आपके मर्जी हाथ में नहीं है, दूसरे लोग आपके साथ में क्या सलूक करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर सिर्फ अपनी खुशी को उन बातों में मत मुसर करनी, नहीं तो दुखी रहेंगे आप। सुखी होने का एक ही तरीका है कि हम अपने कर्तव्य और फर्ज हम कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, हमने पूरे किए कि नहीं किए, बस खत्म हो गई बात। इसको कर्मयोग कहते हैं। अगर आप कर्तव्य कर्मयोगी बन जाएँ और ड्यूटी और फर्ज को ही पर्याप्त मान लें और अपनी ड्यूटी हमने ठीक तरीके से अंजाम दी इसीलिए हमको खुश होने का हक है और हमको संतोष करने का हक है, अगर आप ये बात मान लें तो आप देखेंगे कि आपने केंद्र बिंदु बदल दिया, खुशी का केंद्र बिंदु बदल दिया और आपको 24 घंटे मुस्कुराते रहने का, हंसते रहने का और प्रसन्न रहने का पूरा अवसर मिल गया। आपको कर्मयोगी होना ही चाहिए, आपको अच्छे से अच्छी उम्मीदें करनी चाहिए और बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई ज़रूरी है क्या जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा? नहीं, उल्टा हो गया था, उल्टा भी होता रहता है। आपको मालूम नहीं है पंजाबियों का पंजाब से जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ बेचारे कितने मालदार आदमी थे और एक सप्ताह के भीतर परिस्थितियाँ उलट गई और किसी का बच्चा मर गया, किसी का क्या हो गया, किसी का धन छिन गया, भाग करके इधर आ गए। फिर ये परिस्थितियाँ आपके लिए नहीं होंगी क्या? आपके लिए हो सकते हैं। इसलिए आप अच्छी से अच्छी उम्मीदें कीजिए, अपने भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखिए। हमको अच्छा भविष्य बनाना है, अच्छा भविष्य बनाना है, लेकिन अब साथ साथ में इसके लिए भी तैयार रहिए कि ठीक उल्टा हो जाए तब हम उसके लिए भी तैयार। अपनी लड़की की शादी अच्छी घर में कीजिए, अच्छे घर में ढूंढ दिया, आप उम्मीद कीजिए कि आपकी लड़की का गृहस्थ अच्छा व्यतीत हो गया, पर आप उम्मीद रहिए उम्मीद और आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि जिस लड़के को आपने शादी किया लड़का नाकारा निकल गया था, चोर निकल गया था, दुष्ट निकल गया था, तैयार हो जी लड़की को पहले से इस बात के लिए आगाह रखिए कि ये भी हो सकता है कि इस घर में तुम्हारा सम्मान हो, तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से कट जाए, सपने भी दिखाइए, लेकिन ये तैयार भी रखिए। ये हो सकता है उसी घर की परिस्थितियाँ ऐसी बिकट हो और ऐसे दकियानुस लोग हों, ऐसे चोर चांडाल हों कि वो सब हैरान कर डालें, तब उसके लिए भी तैयार रही, मुकाबला के लिए तैयार रही। उस स्थिति में आप क्या करेंगे ये भी कल्पना की। यानी कल्पना में कहने का अर्थ यह है कि भविष्य के बारे में न केवल सुनहरा सपना देखिए बल्कि बुरी से बुरी बात के लिए तैयार भी रहिए। ये अगर ये से आप मान लेते हैं तो मैं आपको कर्मयोगी कहूँगा, मज़ा आ जाएगा। एक आपकी खुशी का हासिल, एक और खुशी का दूसरा वाला पॉइंट है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। कर्मयोगी को मैं स्वर्ग में निवास करने वाला कहता हूँ। जिसको अपने फर्ज की बात याद रखती है मैं स्वर्ग का निवासी देवता कहता हूँ। और देवता का एक और लक्षण है, क्या लक्षण है? देवता अकेले नहीं खाते, अकेले नहीं खा सकते, अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फ़ायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए। आपके पास स्वास्थ्य है तो मिल बांट के खाइए। हर एक को फ़ायदा उठाने दीजिए, अपनी ही संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है, देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है, क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब देते रहने का? मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों को में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, ये हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते बात अलग है, पर आपने आपकी मान्यता तो यही ना कि आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास अगर कोई ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता हैं, आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं एक, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस उस आदमी का नाम देवता है जो दूसरों की मुसीबतें बटाता है। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट के खाता है। मिल बांट के खाने का मजा देखा आपने? इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है, जो अकेला ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है, जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है, सब मिल बांट के खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, हिलमिल के खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़ी खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है, बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है ना, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है, वसुदेव कुटुंबकम की मान्यता क्या है, आत्मा सर्वभूतेषु, आत्मा सर्वभूतेषु क्या है, एक ही है। आप दूसरों की मुसीबत में हिस्सेदार हो जाइए एक, और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए, हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु, और हो गया वसुदेव कुटुंबकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है, इसीलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसीलिए आपको अपना स्व संकीर्ण स्व जो आपने कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे, आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे, आपको स्वर्ग आ जाएगा। अगर आप ये स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आपने सीमा बंधन अपना ही खाना, अपना ही पहना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही यश, अपना ही नाम कहते रहेंगे, आप बहुत छोटे आदमी रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे, और आपको नरक में रहने वाले को ये यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मानसिक दृष्टि से वो सारी यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, शारीरिक दृष्टि से ठीक है, ये हो भी सकता है कि आप कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको, एक और काम करना चाहिए, कौन सी, खिलाड़ी की ज़िंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की ज़िंदगी आप जिए, खिलाड़ी में हारते ही रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, टीम बना के खेलते हैं, हार गए अरे हार गए तो क्या है, और पत्ता खेलते रहते हैं ना, ताश खेलते रहते हैं, साह कट गया, बेगम कट गई, ओहो गुलाम भी कट गया, सब कट गए, चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं। आप चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए, चिंताओं को और मुसीबतों की कल्पनाएं करके, संदेह करके और भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपको दिल धड़कता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। आप हंसते और मुस्कराते रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे तब, और खिलाड़ी की तरीके से ज़िंदगी जियेंगे तब फिर आपको मैं देवता कहूँगा। ये नाटक है, आप इसके एक पात्र हैं, दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नाटक की तरीके से, एक नटकी तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप एक निश्चिंत होकर के राजा जनक की तरीके से अपनी मनस्थिति को बनाए रखिए, फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला रहूँगा, स्वर्ग की निवास करने वाला रहूँगा। भूत का चिंतन मत कीजिए, पिछला जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपने कोई अच्छे काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की ज़रूरत क्या है, और आपने आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या किसी ने दुख भुगत लिए, बार बार कहने की ज़रूरत क्या है, भूत से भूत, गया सो गया। आप भूत पर मत विचार कीजिए, भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए, करना हमको क्या है, ये सोचते रहेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। बूढ़े आदमी भूतकाल का वर्णन करते रहते हैं, बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, अगर ये विचार आपके जी में आ जाए फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पनाएं करेंगे, योजना बना लीजिए, योजना में हर्ज नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा बात अलग है, योजना बात अलग है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए, एमए नहीं हुए तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुए तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुए तो बात बिगड़ जाएगी, क्या बात बिगड़ जाएगी, दुनिया में बिना पढ़े भी तो है, अब मैट्रिक पास रह गए तो क्या बता गई, ऐसा हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अब ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूँगा। स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरह ज़िंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तरीके तौर तरीक़ों में ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए यहाँ से। और क्या काम करें, आप एक और काम कीजिए कि लोगों से, ये दुनिया बड़ी ख़राब है और बड़ी जलील है, इसमें अच्छाई भी है, भगवान का रूप भी है, ये तो मैं नहीं कहता कि भगवान का रूप नहीं है, तो इसमें कमियाँ कम हैं क्या, बुराइयाँ कम हैं क्या, एक से एक दुष्ट और एक से एक बेईमान दुनिया में भरे पड़े हैं, तो क्या करें फिर, दुष्टों के प्रति द्वेष नहीं बैठे, द्वेष करेंगे आप ही जल जाएंगे, ईर्ष्या से भी आप जल जाएंगे, प्रशोध से भी आप जल जाएंगे, इससे आप सामने वाले का जितना नुकसान करेंगे उससे ज़्यादा अपना नुकसान कर लेंगे। एक तो दूसरे आदमी ने आपको नुकसान पहुँचाया, नुकसान नंबर एक, और एक आपने फिर नई बीमारियाँ शुरू और कर ली, डाह की, ईर्ष्या की, प्रशोध की, घृणा की, ये सारी की सारी चीज़ों को आप बनाए रखेंगे फिर आप कैसे जिएंगे बताइए ना, बाहर से भी पिसेंगे और भीतर से भी पिसेंगे तो आप मरेंगे ना। आप ऐसे मत कीजिए, आप क्या करें, बुराइयों को बर्दाश्त करें, नहीं ये तो नहीं कहता बुराइयों को बर्दाश्त करें, आप बुराइयों से संघर्ष ज़रूर कीजिए। फिर संघर्ष करने का दूसरा तरीका है, कौन सा, वो तरीका है जो कि डॉक्टर इख्तियार करता है, किसके लिए, मरीज के लिए, मरीज के रोगों को मार डालने के लिए हर चंद कोशिश करता है, रोग को बचने न पाए, विषाणु बचने न पाए, रक्त के प्रदूषण बचने न पाए, लेकिन रोगी को नुकसान न होने पा रहे। आप रोगी को बिना नुकसान पहुँचाए बिना उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर जद्दोजहद करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुँचाने की बात सोचते हैं तो वो द्वेष हो जाता है, और आप इसके दोषों को, दुर्गुणों को, कमियों को हटाने की बात सोचते हैं तब फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती, तब कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की बिरादरी में शामिल हो गए। आपको एक और काम करना चाहिए, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने ऊपर डिपेंड कीजिए, अपने ऊपर निर्भर कीजिए। क्या करें, बाहर के आदमियों से मत उम्मीदें कीजिए, मत विश्वास कीजिए, मत अविश्वास कीजिए। आप ये मान के चलिए ये आदमी है, आदमी सो आदमी, अपने ऊपर निर्भर रहिए। आप ये मान के चलिए कि उन्नति करेंगे तो हम ही करेंगे। किसी आदमी से आप आइए आशा लगाए बैठे हैं, वो आदमी आपकी सहायता करेगा, क्यों आपकी सहायता करेगा? आस बिरानी जो करे जियत ही मर जाए, ये देहात की कथा है। आप ठीक है, वक्त मिल जाएगा तो सहायता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, पर जो भी आप कदम उठाएँ अपने पैरों पर मदद करके उठाएँ, उम्मीद ये करें ये काम हमको करना और हम ही करेंगे, अगर आपका ये आत्मविश्वास है तब फिर आपको आत्मनिर्भर व्यक्ति कहा जाएगा, और देवता आपसे कहा जाएगा, देवता कहा जाएगा। देवता आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। सूरज किसी पर डिपेंड नहीं करता कि हमको कोई अर्घ चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। हवा किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी की अपेक्षा नहीं करती। चंद्रमा किसी की अपेक्षा नहीं करता, जमीन किसी की अपेक्षा नहीं करती, और आप किसी की अपेक्षा मत कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सहयोगी जीवन न जिए, परस्पर मिलना जुलना न करें, पर आप ये उम्मीद बनाए रहेंगे अमुक आदमी ये करेगा। जैसे आप परिस्थिति के बारे में ये अनुमान लगाते थे, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो जाएंगी और नहीं हुई तब आप झल्लाते हैं, रोते और खींचते हैं, और किसी व्यक्ति ने अपने आप के साथ में एहसान न किया तब, बदला नहीं चुकाया तब, सहायता न की तब फिर आप झल्लाएंगे कि नहीं झल्लाएंगे? मत झल्लाइए, कोशिश कीजिए, शायद दूसरों का सहयोग मिल जाए। जिस सीमा तक सहयोग मिल जाए उस सीमा तक ठीक, नहीं मिल जाए तो नहीं भी सही ये मान के चलेंगे तब आपकी खीज, जो कि मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा संकट है, खीज से आप बच जाएंगे, खीज से तो बचिए ना, खीज से बचने में क्या दिक्कत है? आप अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए ना। अगर दृष्टिकोण बदल देते हैं तो मैं स्वर्ग का रहने वाला कहूँगा। विधेयात्मक चिंतन ये क्या है? ये वो चिंतन है जिससे कि आदमी देवता बन जाते हैं। हम क्या बनाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे, विचार ही मत कीजिए। अमुक को क्या नुकसान पहुंचाएंगे ये मत जाइए। खराब आदमी है इसको हम अच्छा बनाएंगे, सज्जन बनाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते? खराब आदमी है तो हम इसको मार डालेंगे, उसकी हत्या कर डालेंगे, ये क्यों सोचते? ये मत सोचिए। आप दृष्टिकोण को बदलिए ना। जो कुछ भी आपके पास मिला हुआ है वो कम नहीं है, बहुत मिला हुआ है। आपके प्रसन्न होने के लिए, हंसने के लिए, हंसाने के लिए ये क्या कम है कि आपको इंसानी ज़िंदगी मिली हुई है? आप देखिए ना, ज़रा दूसरे जानवरों को देखिए ना, कीड़े मकोड़ों को देखिए ना, पशु पक्षियों को देखिए ना, कैसी घिनौनी और कैसी गई बीती और कैसी छोटी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। पर आप क्यों ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? भगवान ने तो आपको राजकुमार बनाया है ना, आपको बुद्धि दी है ना, आपको वाणी दी है ना, आपको हाथ पांव दिए हैं ना, आपकी शादी हो गई है ना, आप तो घर में रहते हैं, आपको जीविका है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं। दूसरे को जानवरों को देखिए, उन बेचारों को न कोई तनख्वाह है, न कोई नौकरी है, न कोई कपड़ा है, न कोई बोलने का ढंग है। इन सब के तुलना में आपको कितना मिला हुआ है? आप इसमें खुशी नहीं मना सकते, आप प्रसन्न नहीं हो सकते, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें हमको प्रसन्न रहने का हक। आप तो हमेशा अभावों को सोचते रहते हैं, अभावों को सोचने का अर्थ होता है नरक। अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ आप हमेशा अपने आप को अभावग्रस्त, दरिद्र और कंगाल मानते बैठे रहेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप मत अपने आप को दरिद्र मानिए, मत अपने आप को कंगाल मानिए। फिर आप ये मान के चलिए कि आप देवता हैं, देवता हो गए तो देने में समर्थ हैं। आपके पास देने को बहुत है, आपको अपने लिए गुजारने के लिए भी बहुत है और आप देने के लिए भी बहुत है। जैसे आप पैसा हमारे पास कम है तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे? और पैसा देकर के आप क्या भला करेंगे आदमी का? आप दूसरों को प्यार दीजिए, लोगों की आत्माएं किस कदर प्यार के बिना तड़पती रहती हैं। आप दूसरों को सम्मान दीजिए ना, देखिए सम्मान का दुनिया के कितनी प्यासी है। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ना, देखिए आपको प्रोत्साहन देकर के छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकते हैं। देने के लिए कुछ कम है क्या? आप पसीना दे दीजिए, आप मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए। देने के लिए कुछ भी कम नहीं है। आपके पास देने की अगर मनोवृत्ति हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं, पैसा है तो उसमें से भी रोटी काट करके दे सकते हैं। आप चार रोटी खाते हैं, तीन रोटी खाइए और एक रोटी बचा दीजिए गरीबों के लिए, हिस्सा बांट के दे दीजिए उनका। फिर देखिए वो एक रोटी जो आपने अपने रोटी में से बचत कर ली थी, आपके लिए कितना देवत्व लेकर के आती है और कितनी खुशी लेके आती है, कितना शांति लेके आती है। आप कटौती कर लीजिए, कटौती करके आप दूसरों को देने की तैयारी कर लीजिए, आपके पास ज़रूर मिल जाएगा। एक दिन उपवास कर लीजिए और उपवास करने के बाद में जो उस दिन का अनाज बच गया, उस दिन का जो दाल बच गई, इसको आप कैसे ऐसे दुखियारे के घर पहुँचा दीजिए कि जिसकी उसको ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे किस कदर से आपको किस तरीके से आपको शांति मिलती है और किस तरीके से आप प्रसन्नता के नज़दीक चले जाते हैं। देवता के यही गुण हैं, देवता उदार होते हैं, देवता विशाल हृदय होते हैं, देवता संकीर्ण नहीं होते। देवताओं के मनों में हर समय देने की इच्छा बनी रहती है, हम किसके लिए क्या दे पाएँ। प्यार देना सिखाता है, प्यार देना सिखाता है, सेवा उसी का नाम है, इसका नाम प्यार है। भगवान का नाम प्यार है, रसो वही स, भगवान का नाम रस है, भगवान का नाम प्यार है। प्यार आप भीतर पैदा कीजिए ना, जिस दिन आप प्यार पैदा करेंगे उस दिन आपके मन में से एक ही उमंग और ऐसी हिलोर उत्पन्न करेगी कि हमको कैसे दूसरों की सहायता करनी चाहिए, कैसे हम दूसरों की मदद करें। जब दूसरों की सहायता करने के लिए आमादा होंगे तो आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी। फिर साधु और ब्राह्मण का जीवन जीना पड़ेगा। साधु ब्राह्मण किफायतदार को कहते हैं, मितव्ययी को कहते हैं, अपरग्रही को कहते हैं, सर्व संतोषी को कहते हैं। आप ब्राह्मण बनिए और भूदेव पृथ्वी के देवताओं में अपने नाम को लगा लीजिए। और संतों को भी भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं। संत किसे कहते हैं? परोपकारियों कहते हैं, लोकहित में लगे हुए आदमी को व्यक्ति कहते हैं। जन उनको समाज के लिए विसर्जित और समर्पित लोगों को कहते हैं। सत प्रवृत्तियों में अपने आप को खपा देने वाले का नाम संत कहते हैं। आप संत ब्राह्मण के रूप में अथवा दोनों के संयुक्त जीवन यापन करने के रूप में अगर आप जिए, मजा आ जाए। फिर आप कैसे देवता हो सकते हैं? इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मछली उल्टी दिशा में चलती है, अब मछली के तरीके से उल्टी दिशा में चलिए। जमाने का बहाव किधर है आप मत ध्यान दीजिए, अपने संकल्प और निश्चय कीजिए। हम सिर्फ आदर्शों की तरफ चलेंगे, ऊंचाइयों की ओर चलेंगे। अब मस्ती से रहिए, दूसरों को मस्ती से रहने दीजिए। आप खुशी से रहिए, दूसरों को खुशी से रहने दीजिए। आप जिए, दूसरों को जीने दीजिए। मिलजुल के रहिए, मिल बांट के खाइए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अपने फर्ज और कर्तव्यों के ऊपर जागरूक रहिए। अगर आप इतना कर सके हैं तो देख लेना आप देवता हो जाएंगे और देवत्व का सारा उदय आपके इसी जीवन में हो जाएगा जैसे कि हम अपेक्षा करते हैं। आप इस मन में आए हैं, बहुत मजा। आप आइए, देवता बन के जाइए। अब देवता बनना और राक्षस बनना बिल्कुल आपके हाथ की बात है। आप चाहें तो हम आपको देवता बना सकते हैं और आप देवता बन सकते हैं। उम्मीद ऐसी है आप यही करेंगे। समाप्त।